पाठ का सार। बाल गोविंद भगत नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखाचित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना तथा करनी कथनी में साम्यता रखने वाले का प्रतीक है। पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, पर बाह्य आडंबरों जैसे वेशभूषा, दिखावा युक्त कर्म करने से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत अपने गुणों तथा कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के नहीं। इसके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों और बुराइयों पर करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी का प्रस्तुतीकरण भी किया है। नंबर एक, बाल गोविंद भगत। 60 वर्षीय मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर में एकमात्र लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनपटी टोपी, मस्तक पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित बाल गोविंद भगत कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। सर्दियों में ऊपर काली कमली ओढ़े लेते थे। ऐसे भगत बाल गोविंद को बाह्य वेश से साधु नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे गृहस्थ भी हैं, खेती बाड़ी है और अच्छा साफ सुथरा मकान भी है। यह सब होते हुए भी साधुओं की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले भगत थे। नंबर दो, भगत की साधु प्रवृत्ति। भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों का गाना, उन्हीं के आदेशों पर चलना, उन्हीं जैसा खरा व्यवहार रखना, अस्पष्ट वक्ता, किसी की चीज न छूना, न बिना पूछे व्यवहार में लाना, यहाँ तक कि सोच भी अपने ही खेत में जाना, उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी सब चीज साहब की थी। खेत में जो कुछ पैदा होता उसे भी साहब को भेंट कर प्रयोग में लाते थे। नंबर तीन, आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में भगत के कंठ से फूटते कबीर के पद। लेखक उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर मुग्ध हो उठता है। आषाढ़ में वर्षा होने पर समूचा गांव खेतों में है, बच्चे पानी भरे खेतों में उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं, आसमान में बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है। इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ में फूटता हुआ स्वर कान में पड़ता है तो बच्चे झूम उठते हैं, औरतों के होठ कांप उठते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपाई करने वालों की उंगलियां एक क्रम में थिरकने लगती हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत का ऐसा जादू है। नंबर चार, भादो माह की रात की निस्तब्धता को तोड़ता हुआ संगीत। बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत चौंका देता था। सब सो रहे होते थे और भगत का संगीत जाग रहा होता था। उनका संगीत सोए हुओं को जगा देता था। उनका संगीत अंधेरे में अकस्मात कोंध उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता था। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ऐसे पद गाया करते थे। नंबर पाँच, भगत की प्रभातियाँ। कार्तिक माह आते ही उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थीं। जो फाल्गुन तक चलती थी। इन दिनों सवेरे ही न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते और गांव से बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठकर खंजड़ी लेकर गाने लगते थे। एक दिन लेखक भी वहां खींचा चला गया और उसने देखा कि दांत किटकिटाने वाली ठंड की भोर में काली कमली ओढ़े भगत खंजड़ी लिए चटाई पर बैठे हैं। लेखक ने देखा कि खंजड़ी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि कमली सिर से नीचे खिसक जाती। लेखक कप कपा रहा था किंतु भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते थे। नंबर 6, गर्मियों में आंगन में भीड़। गर्मियों के दिनों में साय को गांव के कुछ लोग जुट जाते थे। खंजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती थी। भगत पद गाते और प्रेमी मंडली उसे दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचे होने लगता। गाते गाते एक स्थिति ऐसी आती जब भगत खंजड़ी लिए नाच उठते। उनके साथ सबके तन मन नृत्य कर उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। नंबर 7, भगत के बेटे की मृत्यु और लेखक का आश्चर्य। लेखक भगत की साधना को देखकर उस दिन दंग रह गया जब भगत का इकलौता बेटा मरा, जिसे भगत बहुत मानते थे, जिसकी बड़ी साध से शादी कराई थी, वही बेटा मर गया है। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया है। अपने ही रोपे गए पेड़ों से तोड़कर फूल बिखरा दिए हैं, तुलसी दल भी बिखरा दिए हैं, सिरहाने एक चिराग जलाकर रख दिया है और ज़मीन पर आसन जमाए वहीं पुरानी तल्लीनता से उसी पुराने स्वर में गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू रो रही है, उसे स्त्रियां चुप करा रही हैं। भगत कभी गाते गाते पतोहू के पास जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। आत्मा परमात्मा में मिल गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात हो सकती है। यह उनकी उस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में मिल गई। नंबर 8, भगत की पतोहू के प्रति सजगता। भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और उसकी शादी करने का आदेश भी दे दिया। पतोहू भगत के प्रति चिंता करती हुई कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। भगत का निर्णय अटल था। भगत ने पतोहू से कह दिया, तू जा, नहीं तो मैं ही घर को छोड़कर चल दूंगा। इस दलील के आगे पतोहू की कुछ नहीं चली। नंबर 9, बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर से खाकर जाते और लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, प्यास लगती पानी पी लेते, आने जाने में 4-5 दिन लगते, किंतु लंबे उपवास में वही मस्ती दिखाई देती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत बिल्कुल सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार भी आने लगा, फिर भी नेम व्रत नहीं छोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, कुछ नहीं छोड़ा। परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। इस प्रकार से बाल गोविंद भगत का सार प्रस्तुत किया गया है।